This is an ABP Life podcast.
जैसे ही सत्ता हाथ में आई, सबसे पहली खबर महाराष्ट्र से ये आई कि संजय राउत साहब को प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी से बुलावा आ गया है और शरद पवार साहब को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने समन भेज दिया है, जिसे शरद पवार ने लव लेटर कहा है। और ये कोई नई बात नहीं है, कम से कम आजकल तो नहीं। जिस नेता को या पार्टी को डराना हो, धमकाना हो, बस एक नोटिस प्रवर्तन निदेशालय का या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का भिजवा दो, आ जाएंगे ऊंट पहाड़ के नीचे। तो कैसे निपट रही हैं गैर बीजेपी पार्टियां इस पैंतरे से, और क्या है इस पैंतरे का इतिहास, जब केंद्र और राज्य एक दूसरे को डराने धमकाने के लिए इन जांच एजेंसियों का सहारा लेने लगते हैं। हमने बात की है नवोदय टाइम्स के संपादक अकुश श्रीवास्तव से, और उनसे भी कुछ सवाल इसी मुद्दे के इर्द गिर्द पूछे हैं जो हम आपसे साझा करेंगे इस एपिसोड में। तो जी नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं हूँ साहिबा खान और आप सुन रहे हैं एबीपी लाइव पॉडकास्ट की पेशकश FYI। दोस्तों, भारत का संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन एक फेडरल स्ट्रक्चर यानी कि संघीय ढांचा ध्यान में रख करके बनाया गया था। संघीय ढांचा यानी कि दो सरकारें होंगी, एक तो केंद्र में और एक राज्य में। कुछ जगहों पर केंद्र हावी रहेगा तो कुछ मुद्दों पर राज्य सरकारें। मगर आजकल जो एक चीज दिखने सुनने में या प्रचलन में बहुत है, वो है केंद्र बनाम राज्य और स्पेसिफिकली गैर बीजेपी सरकारें। आए दिन सुनने में आता रहता है कि आज इसको ईडी का नोटिस पहुंच गया तो कल को उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस भेज दिया। 2014 से अब तक लगभग 570 केस हैं जो गैर भाजपा नेताओं और लोगों के खिलाफ बनाए गए हैं। तुलना करेंगे तो पता चलेगा कि कांग्रेस के दूसरे कार्यकाल से 340% ज्यादा है ये आंकड़ा। इस पैंतरे को अब विपक्ष ने नाम दे दिया है वेंडेटा पॉलिटिक्स यानी कि प्रतिशोध की राजनीति। और अगर ये प्रतिशोध की राजनीति है भी, तो विपक्ष इसका सामना करने के अलावा बाकी सब कुछ कर रहा है। झूठ बोल रहा है, विक्टिम बन रहा है, खुद को बयानों से डिफेंड कर रहा है, या फिर जैसे को तैसा। मगर अब शायद पार्टियों ने समझ लिया है कि इन धमकियों से ना निपटना आसान नहीं है, मगर नामुमकिन भी नहीं है। जहां संजय राउत ने रिक्वेस्ट किया कि सवाल जवाब को आगे बढ़ा दिया जाए, जो कि बढ़ाए नहीं गए, वहीं शरद पवार ने इनकम टैक्स के नोटिस को लव लेटर कह दिया, मतलब उसे हंसी मोड़ा दिया। मगर मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया तरीका है भाई आम आदमी पार्टी का। आप पूछेंगे कैसे, पहले ये छोटी सी एक बाइट सुन लीजिए जो अरविंद केजरीवाल साहब ने कैमरे पर आकर के दी थी जब उनके मिनिस्टर सत्येंद्र जैन को हिरासत में ले लिया गया था। सुनिए क्या कहते हैं।
तो बीजेपी की केंद्र सरकार ईडी के साथ साथ अगर और भी एजेंसीज भेजना चाहे, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, और भी जितनी उनके पास एजेंसी, दिल्ली पुलिस है, जो जो एजेंसीज भेजना चाहे वो भेज सकती हैं। वो गिरफ्तार करना चाहे केवल सत्येंद्र जैन नहीं, और भी किसी को भी गिरफ्तार करना चाहे गिरफ्तार कर सकती हैं।
केजरीवाल ने अपनी सो कॉल्ड साफ सुथरी छवि को मेंटेन करने के लिए हमेशा ही कहा है कि हम खुद भ्रष्ट नेताओं को पार्टी से अलग करेंगे। तो बीजेपी इस बयान के खिलाफ शायद कुछ ज्यादा कर नहीं पाई। आई थिंक बीजेपी वॉज नॉट इवन रेडी फॉर दिस। रोने की बजाय पार्टी ने खुद ही बोल दिया कि आन दो। जिस नब्ज को बीजेपी पकड़ती है कि बाकी सरकारें तो भ्रष्ट हैं, देशद्रोही हैं, इसलिए हमें वोट दें, वो भाजपा आपके साथ नहीं कर पाई, क्योंकि आपने रोने की बजाय कह दिया कि हम तुमसे बड़े देशभक्त हैं भाई। और किसी भी भ्रष्ट नेता को, जिसकी परिभाषा अब देशद्रोही की परिभाषा से भी मेल खाने लगी है, उसको पार्टी में हम रखेंगे ही नहीं। अरविंद केजरीवाल भी संघ और भाजपा की भाषा बोलते दिखाई दिए। वैसे काम तो राहुल गांधी ने भी बुरा नहीं किया, 50 घंटे चली है साहब की ईडी द्वारा पूछताछ, और उन्होंने भी कॉपरेट किया है। महाराष्ट्र में जहां महाविकास अघाड़ी ने देशद्रोह के मामले में नवनीत और रवि राणा को आड़े हाथों लिया, वहीं ममता बनर्जी ने भी अर्जुन सिंह को करप्शन के चार्जेस के तहत अंदर कर दिया। इत्तेफाकन ये अरेस्ट भी तभी हुआ जब ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर केंद्र की जांच एजेंसी सीबीआई ने अपनी नजर गढ़ाई और सवाल जवाब के लिए उन्हें समन भेजा। इसे कहते हैं टिट फॉर टैट कि भाई तुम अगर सीबीआई का समन भेज। पहले की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, इंदिरा गांधी के समय की। दोस्तों, इंदिरा गांधी के समय में कई बार पार्टियां साथ आई थी ताकि केंद्र उन पर अपना वर्चस्व डोमिनेशन ना बना सके। 1980 में सत्ता में लौटने के बाद से इंदिरा गांधी ने 9 राज्य सरकारों को बर्खास्त कर दिया था, जिसके कारण ग्रैनिविल ऑस्टिन ने इसे 1983 का संवैधानिक विद्रोह भी बताया था। तो चलिए अभी हम बात करते हैं अकुश श्रीवास्तव साहब से और उनसे समझते हैं कि वो इसके बारे में क्या सोचते हैं।
जैसे कि हमने देखा कि संजय राउत ने कहा है कि उनके जो विधायक हैं उनको ईडी के जरिए बीजेपी ने अपने साथ लिया है और वो प्रेशराइज कर रहे हैं विधायकों को
ये कुछ हथियार होते हैं, अदृश्य हथियार होते हैं, और हर सरकार के पास में एक अदृश्य हथियार होते हैं। पहले होता था कि पुलिस का हथियार होता था, पुलिस के सहारे बहुत सारी चीजें की जाती थी, उसके पहले भी, और आप देखेंगे तो जब सोफिस्टिकेशन का ज्यादा दौर होता था, सीबीआई का तो आपको याद ही होगा कि तोता कहा गया था उसको, इस जमाने में नहीं पहले कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, तो उस तोते के तौर पर इस्तेमाल किया गया। तो ये सब जो जितनी संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, इनका इस्तेमाल किया जाता रहा है, आज से नहीं पहले से किया जाता रहा है। इसमें दम भी हो सकता है संजय राउत की बात में कि ये जो विधायक थे, जितने भी विधायक थे, क्योंकि महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, ये सब वो राज्य हैं जहां पर बहुत सारा लोग बहुत सारे तरीके से पैसा बटोरने में, और उनका एक बड़ा धंधा रियल एस्टेट का होता है, तो रियल एस्टेट में वो काम करते हैं, और रियल एस्टेट में काम करने के कारण, क्योंकि उसमें बहुत बड़ा अमाउंट जुड़ा होता है, नंबर दो का पैसा उसमें जुड़ा होता है, और कई बार रियल एस्टेट में अरब कंट्रीज का पैसा और उसके बदमाशों का, जैसे फिल्मों में पहले कहा जाता था असामाजिक तत्व हैं, उनका पैसा जुड़ा हुआ है, नाम भी लिया जा सकता है जिसमें फिल्में बनी हैं बहुत सारी, आपने देखा ही होगा, वो तो दाऊद का पैसा बताया जाता था। तो अब उसी तरीके से वो इस्तेमाल हुआ जाता था, और अब जो है वो एक जो हथियार है, हथियार के तौर पर अब ईडी आ गई है, क्योंकि ईडी सबसे आसान है, क्योंकि पैसा ये लोग जो है वो जमा करते हैं, फिर आधा इधर उधर कर देते हैं, तो ये सब लोग फंसे होते हैं ईडी के जाल में, आप अनदेखा करें या नहीं करें, ज्यादातर लोग फंसे होते हैं, चाहे वो कांग्रेस के जमाने में होता रहा हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के जमाने में है, और अब आपने देख लीजिए अब खेल क्या शुरू हो गया, ईडी नहीं है, अब खेल ये शुरू हो गया जब सोशल मीडिया का दौर आ गया, तो साहब पुलिस आपके खिलाफ FIR करने लग गई है, तो अब वो छोटे लिए बहुत सारी चीजें, और आज तो एक ऐसी चीज हुई है जिसको मैं बहुत साफ साफ अब मैं कहूंगा, आप समझ जाएंगी, लोग समझ जाएंगे, संवैधानिक संस्थाएं अब ऐसा करने लग गई हैं कि वो इस तरीके के बयान और बातें करने लगी, जिसकी वजह से सीधे सीधे एक डर धमकी हो जाती है। तो अब उनका इस्तेमाल, जबकि ये माना जाता है कि संवैधानिक संस्थाएं जो हैं वो किसी के डर दबाव में नहीं होती हैं, लेकिन अब ये माना जा कभी कभी कहा जाता है, और कभी लगता है कभी नहीं लगता है, कि वो सरकार के इशारे पे कर रही हैं, या अपनी एक चलाने के लिए, अपनी एक अपना रुतबा बनाए रखने के लिए कर रही हैं। तो यहाँ ईडी जो का इस्तेमाल है, क्योंकि ये सब लोग जितने विधायक जिनका हम लोग जिक्र कर रहे हैं, संजय राउत का जब जिक्र कर रहे हैं, वो सब किसी ना किसी से कोई दूध का धुला नहीं है, ये मैं बता दूं आपको, ये सब जब इतने वैभव में जीते हैं और अगली 7 पुश्तों का जब इंतजाम करते हैं, तो बिना कोई नंबर दो का काम किए नहीं कर सकता, तो इन सब पे दबाव वही है। तो कहीं स्टेट लेवल की सरकारें करती है जहां उनको हक लगता है, आपने देखा ममता दीदी के यहाँ क्या हो रहा था, राजस्थान में क्या हो रहा था, या उत्तर प्रदेश में भी क्या हुआ होगा, वहां पे भी वो इस्तेमाल हुआ था, और यहाँ एक केंद्र के लेवल पे जब चीजें आती है तो उसमें ईडी है, इनकम टैक्स है, और ये सब चीजें चलती है, बड़े वो खेल है, उसमें क्या कहा जाए।
जी जी सर, जैसे अगर हम इसके इतिहास की बात करें, आपने बोला है कि ये अभी की बात नहीं है, ये पहले से होता आ रहा है,
मुझे लगता है लगभग ईडी का मामला 3 दशकों से ज्यादा से चल रहा है, और वो मामले समय समय पर लिए जाते रहे हैं, लेकिन तब वो बहुत पॉलिटिकली लोगों के खिलाफ उतने कम होते थे। आप ईडी के मामलों को अगर आप देखना चाहेंगी तो वो, फिर मैं कहूंगा ईडी के मामले पॉलिटिकली भी होंगे तो फिर वो ईडी के मामले बहुत सारे आपको उत्तर प्रदेश में नहीं मिलेंगे, आपको बिहार में नहीं मिलेंगे, पश्चिम बंगाल में नहीं मिलेंगे, लेकिन ईडी का मामला जहां आएगा वो महाराष्ट्र में आएगा, कर्नाटक में आएगा, तमिलनाडु में आएगा, जहां पैसे का खेल बड़े स्तर पर और बड़े तरीके से किया जाता रहा है,
या फिर जहां रियल एस्टेट भी शायद ज्यादा महंगी हो,
यही रियल एस्टेट, फिल्में, इन सब के जहां इन्वॉल्वमेंट होते हैं, तो या जब आप जितने भी उद्योगपति हैं, पहले उनका इस्तेमाल ज्यादातर उद्योगपतियों पर हुआ करता था, और उद्योगपतियों में आप अगर देखेंगे तो रिलायंस तक पे एक जमाने में, पहले छापे पड़े थे, फिर उसके बाद में और घरानों पर छापे पड़े। पॉलिटिकली उतने ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता था, लेकिन पवार के खिलाफ पड़ चुका है, आज नहीं 30-31 साल पहले पवार साहब उसमें पहले आ चुके हैं। तो इसी तरीके से अन्य राजनीतिज्ञों के खिलाफ उतना ज्यादा नहीं था। आज राजनीतिकों के खिलाफ कहां, आज भी राजनीतिक इंडिविजुअल कहां होता है। आप ईडी के छापे जो पढ़ते हैं, बताइए किसके यहाँ पढ़ते हैं। नेशनल हेरल्ड को लेकर के पढ़ते हैं, तो नेशनल हेरल्ड का इतिहास कोई आज का तो है नहीं, 40 साल का, मतलब 40 साल के विवादों का इतिहास है। और उसके बाद जब ये प्रक्रिया बदली, एसोसिएटेड जनरल जब ये राहुल गांधी के नए संस्थान में बदला, तो वही दूसरी इतिहास हुआ। तो हाँ, उसमें इन्वॉल्व राहुल गांधी हो गए हैं। या जमीन को लेकर के जब भी हुआ, हरियाणा में जब होते हैं, जो भी जितने भी ईडी और अन्य छापों को लेकर के होते हैं, तो हरियाणा में क्या हुआ था, उसमें भी वही जमीन को लेकर के। कहीं पर भी जो कुछ भी होता है, या तो वो जमीन को, जमीन यानी रियल इस्टेट को लेकर के होता है, और या जब आप बड़े व्यवसायिक संस्थान से जुड़े होते तो। आखिर कैसे संभव है कि एक नेता जिसकी तनख्वाह 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख और या एक पूर्व नेता जो 11 बार चुन के आया हो, अगर अभी पेंशन रुकी नहीं है तो 6 लाख 7 लाख, लेकिन वो अपने गांव में हेलीकॉप्टर के लिए अपना हेलीपैड बनवा लेता है, एक प्रभावशाली जिंदगी जीता है। मुलायम सिंह यादव, आप जरा बताइए मुझे, मुलायम सिंह यादव जो थे वो एक स्कूल में मास्टर हुआ करते थे 45 साल पहले। मुलायम सिंह यादव एक स्कूल में मास्टर हुआ करते थे, आज वो अरबों की संपत्ति कहां से आई है, मायावती,
उनकी गायों के पास भी एसी लगे हुए कहते हैं।
मायावती के पास में जो यूपी की एक शिक्षिका हुआ करती थी, कांशीराम के साथ में 45 साल पहले जो घूमा करती थी, प्रचार किया करती थी, आज अरबों की मालकिन क्या 2-2 रुपए के चंदे से हैं क्या? कि किसको आप बेवकूफ बनाना चाहते हैं? राजनीतिक सब पैसा अपना इसी तरीके से करते हैं। आज कहने वाले अभी नाम नहीं लिया, किसी ने, मैं कह रहा हूं, मान लीजिए कि अगर मायावती पे, या ये अभी कोई भी कह सकता है कि इस समय बीजेपी ने दबाव डाला होगा मायावती पर कि साहब अपना आप आजमगढ़ में उम्मीदवार खड़ा कर दो। यूसुफ जलानी जो वहां पर वो प्रत्याशी था, उसको खड़ा कर दो ताकि हम आसानी जीत जाए, तो ये मायावती मान लेंगी। आप कह सकते हैं, आप गणित भी जोड़ लेंगी, हाँ यार मायावती क्या दिक्कत, मायावती वैसे बाय इलेक्शन चुनाव नहीं लड़ती है, इस बार लड़ लेंगी, बीजेपी जीत जाएगी, उससे फायदा हो जाएगा। तो ये सब दबाव डायरेक्टली इनडायरेक्टली हो सकते हैं, लेकिन ये किनके खिलाफ होंगे, जो चोर उचक के भ्रष्ट लोग होंगे। मैं तो इकोनॉमिक ऑफेंडर को ज्यादा बड़ा चोर उचक का मानता हूँ, उनको पहले फांसी मिलनी चाहिए जो देश को बिल्कुल नष्ट कर रहे हैं, वनस्पति उसके जो और लोग हैं उनको। तो ये पूरा पॉलिटिकल खेल है, जिसके पास सत्ता है वो
सर, लेकिन पॉइंट ये भी तो नहीं है ना कि कन्विक्ट
गलत नहीं है
सर, लेकिन मैं कह रही हूँ कि पॉइंट इन खेलों का, इन पैतरों का ये है भी नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि कन्विक्शन हो, दिक्कत बात ये है कि आपकी रिसोर्सेस खत्म हो जाए। आपको रोज जब आपको 10-10 घंटे की पूछताछ होगी, रोज आपको उड़ उड़ के जाना पड़ेगा कोर्ट में, तो वो भी एक, मुझे ऐसा लगता है कि वो पॉइंट है आपकी रिसोर्सेस खाली करना।
मैं फिर कह रहा हूँ, मुझे तो कहता हूँ ना कि अगर आपने चोरी की तो आप डरिए, और अगर आपने चोरी नहीं की है तो क्यों डर रहे हैं आप बैठ करके। ठीक है, एक बार जाओगे, 2 बार जाओगे 3 बार जाओगे, राहुल गांधी 40 घंटे हुआ है तो कौन सी बड़ी आफत हो गई, राजनीति कर रहे हैं, दुनिया जहां की पूरी सुविधाएं लेते हैं, पता तो लगे कि एकनाथ शिंदे के पास जो एकदम से जगह जमीन आई है वो कहाँ से आई है। स्टालिन की बिटिया के यहाँ छापे पड़ते हैं तो क्यों पड़ते हैं। इसी तरीके से आपने जब अपने साम्राज्य का विस्तार किया और राजनीति के चक्कर में, तो वहां ज्यादा पड़ते हैं।
जी सर, क्या आखिरी सवाल है मेरा, क्या कहीं एक हमारा जो संविधान जब बना था तो एक संघीय ढांचे के हिसाब से बना था, फेडरल ढांचे के हिसाब से बनाया गया था, यानी कि एक आपकी सरकार हो राज्य की और एक है केंद्र की, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इन पैतरों की वजह से सरकारें एक दूसरे को ही नीचे दबा रही हैं, और जिस वजह से आगे चल के मतलब लोकतांत्रिक हमारे जो हक हैं उनमें दिक्कत आ सकती है।
बिल्कुल ठीक है, आप इसमें बिल्कुल सही है, जो एक संघीय ढांचा है वो बना रहना चाहिए, उसका आदर किया जाना चाहिए, एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। जहां जो संविधान ने 3 क्षेत्र तय कर रखे हैं, जो जैसे जैसे जिसके हैं, चाहे वो जो राज्य के मामले वो राज्य में हो, जो केंद्र के मामले में केंद्र में हो, जहां दोनों के मामले हो सहमति असहमति का, वो वहां निपटाया जाना चाहिए। संघीय ढांचा बनाए रखना बहुत जरूरी है, देश की राजनीति के लिए जरूरी है, चाहे वो बीजेपी केंद्र में हो या कांग्रेस केंद्र में हो। और इसीलिए ये भी बहुत जरूरी है कि विपक्ष बहुत मजबूत हो। तो चाहे सत्ता पक्ष मजबूत हो, चाहे विपक्ष मजबूत हो, विपक्ष जब मजबूत होगा तो सत्ता पक्ष पे भी नियंत्रण रहेगा और वो अपना काम ठीक से कर सकेगा। लेकिन अगर विपक्ष मजबूत नहीं होगा, जो हमारे यहाँ देश में बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होने जा रहा है या हो रहा है, उसकी वजह से सत्ता की निरंकुशता बढ़ती चली जाती है, जो नहीं होनी चाहिए। और ये संघीय ढांचे पर जो सवाल उठाए जाते हैं या जो उसके स्वरूप को लेकर के सवाल उठाए जाते हैं, वो इसी वजह से उठाए जाते हैं कि जब एक निरंकुशता बढ़ जाती है और ये संघीय ढांचे की निरंकुशता, जब ये निरंकुशता बढ़ती है तो संघीय ढांचे पर भी निश्चित रूप से सवाल उठाए जाएंगे। इसका तरीका सिर्फ एक ही है कि विपक्ष मजबूत हो, उसको भी ताकत रहे, उसके बाद भी जो फिलहाल हमें अफसोस की बात है कि देखने को नहीं मिलता। अभी तक कोई सरकार तो नहीं भंग की, उसके पहले मिसेस गांधी जैसे ही 1970 में जीत करके दोबारा अपने असली में आई थी तो एक साथ कितनी सरकारें गई थी जरा गिन लीजिए।
जी, जी।
तो संघीय ढांचा तब नहीं सवाल उठा, तब भी उठा था, बहुत हल्के से उठा था, क्योंकि तब हमारे पास बहुत कान नहीं थे, बहुत सारी मुंह नहीं थे, सोशल मीडिया नहीं थी, तब नहीं उठा था, लेकिन आज उठा हुआ है। तो ये एक प्रक्रिया है जिसको लेकिन ये भी है कि संघीय ढांचा बना रहना चाहिए। आप अपनी, अब ये संघीय ढांचा आपका कहाँ चला जाता है, जब ममता बनर्जी जो है वो राज्यपालों की, वो कुलपति के सबके, राज्यपालों राज्यपाल से अधिकार ले लेती कुलपति के चयन का, ये संघीय ढांचा कहाँ चला जाता है। और देश के तीनों संस्था जो स्तंभ हैं, मैं जो मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है, कहने के लिए कहा जाता है, तीन हैं तो तीन ही स्तंभ, वो उन तीन स्तंभ को की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है कि वो अपने अपने काम करें।
जी अक्कू जी, मेरे सवाल यहाँ खत्म हो गए हैं, मगर बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, हमसे बात करने के लिए, और बहुत मजा आया आपसे बात करके।
थैंक यू, नमस्कार।
जी नमस्कार।
तो आपने सुना ना कि क्या कहा अक्कू साहब ने, कि अगर हम चोर नहीं हैं तो हमें डरने की क्या बात है। हम अगर जानबूझकर इन एजेंसियों का फायदा उठाना, ये एक दूसरे को कमजोर करने के लिए, ये हमारे लोकतंत्र को ना कमजोर कर सकता है। तो पहली सीख तो ये कि भ्रष्ट ही ना हो, और हो तो बजाय प्रताड़ना स्वीकार करने के जवाबी कार्रवाई करें, क्योंकि ये तो अरसों से होता आ रहा है और ये अरसों तक होता रहेगा। जरूरत है खुद को सही रखने की। मैं हूँ साहिबा खान, आप सुन रहे थे एबीपी लाइव पॉडकास्ट की पेशकश। FYI, पॉडकास्ट की साउंड डिजाइन की है ललित ने। नमस्कार।
दिस इज एन एबीपी लाइव पॉडकास्ट।